आये प्रकृतिया नियता स्वया, अपने प्रकृति के वशीभूत होकर तरह तरह से देवताओं की उपासना करते हैं, मेरी उपासना नहीं करते। अब इस बात पर सेठ जी के मन में भाव आया, कहते हैं कि कर्मों के फल की रक्षा करने वाले, इच्छा रखने वाले देवताओं की उपासना करते हैं। क्यों करते हैं? क्या भगवान को याद करने से या भगवान की उपासना करने से भगवान जल्दी फल नहीं देते? यदि नहीं देते हैं तो क्यों नहीं देते हैं भगवान? तो भगवान में और देवताओं के व्यवहार में फर्क है। देवताओं का जो व्यवहार होता है वो एक प्रकार से संसार के स्वार्थी मिनखों के समान है, स्वार्थी आदमियों के समान है। जैसे कोई स्वार्थी आदमी है और मजदूरों को कुछ अधिक पैसा देता है और कहता है कि तुम ज्यादा काम करो, ज्यादा काम करो तो ज्यादा पैसा देंगे, और वे मजदूर ज्यादा पैसा लेकर शराब पीते हैं। तो उस आदमी के पास एक मित्र गया और उसने कहा कि भाई तुम इनको फालतू ही इतना पैसा क्यों देते हो, ये तो शराब पी लेते हैं, तो तुम भी तो पाप के भागी बनोगे कि इनको ज्यादा पैसा दे करके शराब के अंदर तुमने इनको प्रेरित कर दिया, पाप के भागी बनोगे। मदिरा पीने वाला भी पाप का भागी होता है और पिलाने वाला या देने वाला या उनको मना नहीं करने वाला वो भी पाप का भागी होता है। इसलिए व्यर्थ का इनको व्यर्थ पैसा मत दो, ज्यादा देर काम कराकर ज्यादा पैसा मत दो, ये उसका मित्र बोलता है। उतना दो जितने से इसका खाने पीने का खर्चा आराम से चले, इसकी स्त्री है, बाल बच्चे हैं, ये आराम से भोजन कर सके, उतना दो, ज्यादा मत दो। तो वो आदमी बोलता है कि भाई पैसा तो हम देते हैं, और वो अपने दिमाग से सोचता नहीं, शराब वो पीता है, इसका हम क्या करें? हमारे तो कोयला खान है, कोयले की खान है, तो हमको तो ज्यादा कोयला निकलेगा तो ज्यादा हमारी बिक्री होगी, हमको पैसा ज्यादा मिलेगा, इसलिए हमारा काम तो बन ही गया। अब वो चाहे हमारे दिए हुए पैसे से शराब पिए, चाहे कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही स्वार्थ की बात देवता लोग करते हैं, उनकी कोई उपासना करता है तो देवता यह नहीं देखते कि इसकी मनोती को पूरा करने में इसका हित है कि अहित है, वो सोचते ही नहीं, इसको वरदान देने में हित है कि अहित है सोचते ही नहीं। देवताओं को तो अपनी उपासना कराने में खुशी होती है, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान अहित तो सोच ही नहीं सकते, हित ही सोचते हैं। जैसे कोई अच्छा वैद्य होता है और निष्काम भाव से रोगी का हित सोचकर इलाज करता है तो उसके इलाज में कोई कमी नहीं रहती है, परंतु जो स्वार्थी होता है, वैद्य स्वार्थी होता है, तो वो सब प्रकार से रुपया ऐंठता है। वो कहता है ये मेरी फीस है, ये मेरी दवाई है, मैं मोटर से आया हूं तो ये मेरे मोटर का किराया है, न जाने कितने कितने बहाने से वो पैसा लेता है। बीमार को देना पड़ता है। तो वो वैद्य है, वो इलाज रोगी का करता है कि अपने खाने पीने का करता है, तो वो ही जाने। ऐसे देवता लोग होते हैं। माता पिता बालक का हमेशा हित सोचते हैं, उससे भी बढ़कर भगवान सबका हित सोचते हैं। माता पिता तो बालक का ही हित सोचते हैं और भगवान सबका हित सोचते हैं। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, वह तो हमेशा सबका समान रूप से हित करते हैं। पर यह बात देवताओं में नहीं है। उनकी कोई पूजा करता है तो उसकी मन की इच्छा पूरी करते हैं, और जो उनकी पूजा नहीं करता है तो वो ये नहीं सोचते कि इसका हित होगा कि तभी मनवांछा पूरी नहीं करते, ऐसे स्वार्थी होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, परंतु उमा राम सम जग को नाई, गुरु पितु मातु बंधु सुत नाई। हे उमा, राम के सिवा कोई दुनिया में हित करने वाला नहीं है। माता पिता गुरु भाई सुहृद पुत्र कोई नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई भगवान हमारा सबसे बड़ा हित करने वाले हैं। तो अब हमको सोचना चाहिए कि जब भगवान हमारा हित ही करते हैं तो हम भगवान से मांगे ही क्यों? क्या भगवान को पता नहीं है कि हमारा हित किस में है? हमको मांगना ही नहीं चाहिए। और वो जब हमारे हैं तो उनकी उपासना क्यों नहीं करें? हमारे हैं इसलिए पूजा तो करनी चाहिए। देवता हमारे नहीं है, देवता हमारे नहीं है, भगवान हमारे हैं। इसलिए देवताओं की उपासना न करके भगवान की करो। वह सबकी मांग पूरी करते हैं, परंतु कोई सोचे कि भाई जब वो मांग पूरी करते हैं तो हम जो चाहे वो बात भगवान पूरी क्यों नहीं करें? कि भाई उसमें हमारा हित नहीं होगा तो नहीं करेंगे। जैसे माँ बच्चे का हित समझती वही करती है। बच्चा यदि चाकू से खेलने लगेगा, बच्चा राजी तो होता है चाकू से खेलते समय, पर माँ उसके हाथ में चाकू रखती नहीं है, माँ उसके हाथ से चाकू छीन लेती है। कांच का टुकड़ा है, छीन लेती है। गोली होती है कांच की, बच्चा मुंह में लेता है, राजी होता है, पर माँ उसके मुंह के जबाड़े को दबा करके मुंह से निकाल लेती है। ऐसे भगवान है। ये मनुष्यों की मूर्खता है जो भगवान को छोड़कर देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी बात और है, भगवान जो फल देते हैं वो स्थिर होता है, देवताओं का जो फल होता है वो स्थिर नहीं होता, थोड़े दिन में समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान से ही मांगना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देवताओं के भक्त अंत में देवताओं को प्राप्त होते हैं और भगवान के भक्त अंत में भगवान को प्राप्त होते हैं। तो देवता बनने में लाभ है कि भगवान को प्राप्त होने में लाभ है, ये तो अपने सोचने की बात है। परमात्मा को चाहे निष्काम भाव से बजो चाहे सकाम भाव से, निष्काम भाव ऊंचा भाव जरूर है, परंतु सकाम भाव से भी यदि कोई भजता है तो अंत में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, चाहे थोड़ा समय लग सकता है। भगवान का भजन करने से भक्ति समाप्त नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। और जहां मांगने पर देवताओं की भक्ति की जाती है, वो देवताओं का अनुष्ठान थोड़े दिनों के बाद समाप्त हो जाता है। कभी कभी भगवान अपने परम प्यारे भक्त को मांगने पर भी नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं देते हैं? कि ये भगवान की बहुत विशेष कृपा समझनी चाहिए। जैसे नारद जी ने भगवान से कहा कि हे महाराज, मुझे आप अपना रूप दे दो ताकि मुझे वो राजकुमारी वरण कर ले, उस राजकुमारी से शादी हो जाए मेरी स्वयंवर में। भगवान ने सोचा कि अरे नारद जैसा मेरा भगत, इसको यदि मेरा रूप दे दूंगा तो मेरे भक्त का पतन हो जाएगा, इसलिए उसको अपना तो रूप दिया नहीं और नारद का जैसा रूप था वो रखा नहीं, उल्टा उसको बंदर का रूप दे दिया। और उस रूप को देखकर सब ने नारद जी की हंसी उड़ाई। नारद जी चिढ़ गए। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। तो जिनको नारद जी ने शाप दे दिया, तो नारद जी ने भी किन्हीं को शाप दिया था? नारद जी ने जिन दो को शाप दिया था ना, भगवान के गणों को, शिव के गणों को, तो वो आए नारद जी के पैरों में पड़े, गिड़गिड़ाए, कहने लगा महाराज आपने हमको शाप क्यों दिया, कि तुमने हमारे रूप को देखकर हंसी क्यों उड़ाई? तो महाराज इसमें हमारा क्या अपराध है, आपका रूप ही हंसने लायक है, आप देख लो, हमको क्या हंसी आए, यदि आप देखो तो आपको भी हंसी आ जाए, ऐसा आपका रूप है। उन्होंने अपना रूप देखा तो एकदम स्तंभित हो गए। बड़े जोश के साथ नारायण के पास गए और कहा मैंने आपका स्वरूप मांगा और आपने मुझे बंदर का रूप दिया। तो भगवान ने कहा नारद जी, मैंने तो आपका हित ही सोचकर रूप दिया, आपने मुझे ये भी तो कहा था जय विधि नाथ होई हित मोरा, तो मैंने आपका हित समझ करके रूप दिया है, तो मेरा बंदर रूप देने में क्या हित आपने समझा है? हम तुमको शाप देते हैं कि जाओ, मनुष्य रूप में आपको जन्म लेना पड़ेगा और बंदर लोग तुम्हारी सहायता करेंगे और आपको भी अपने स्त्री के लिए रोना पड़ेगा, जैसे मैं आज रो रहा हूं वैसे आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा नारद जी बहुत ठीक है, आपका तो हित कर दिया, अब चाहे हमको, चाहे आप शाप दो, चाहे हमारे पर नाराज हो, चाहे बिगड़ो, चाहे हमको मनुष्य बनाकर भेजो, चाहे स्त्री के लिए रोना पड़े, चाहे हमको बंदर की सहायता लेनी पड़े, हम हमारा भोग लेंगे, आपका तो हमने हित कर ही दिया। तो ऐसी लीला भगवान ही कर सकते हैं। क्या भगवान नारद जी को दोबारा शाप नहीं दे सकते थे? पर भगवान हित ही करते हैं, दुख नहीं देते हैं। भगवान को शाप दे और भगवान चुपचाप सह ले, ऐसा नहीं होता। मां से बढ़कर है भगवान। बच्चा मां की गोद में मां के लात मारता है, छाती पर मुक्का मारता है, क्या मां वापिस ऐसा करती? कि भगवान ने ध्रुव जी को राज्य न मांगने पर भी राज्य दे दिया, 36,000 वर्ष तक का राज्य प्रहलाद जी को दिया। ध्रुव जी के मन में जब विशेष भक्ति पैदा हुई तो ध्रुव जी ने केवल इतना ही कहा था कि महाराज आपकी भक्ति तो निष्काम भाव से करनी चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, अब मैं कहता हूं तुमको राज्य करना पड़ेगा। तो नारद जी को मांगने पर भी रूप नहीं दिया, क्योंकि नारद को न देने में हित था और ध्रुव जी को न मांगने पर भी राज्य दिया ताकि ध्रुव जी के राज्य की वासना समाप्त हो जाए, इसलिए दिया। तो भगवान के देने में भी कृपा है और न देने में भी कृपा है। और भगवान ने ध्रुव जी को ध्रुव पद दिया और अपनी भक्ति और दे दी, और सप्तर्षि मंडल भी आज उसकी परिक्रमा करता है। तो भगवान ने ध्रुव जी को मुक्ति, भक्ति, राज्य सब कुछ दिया, इसलिए भगवान को भजने से और भगवान से मांगने में लाभ ही लाभ होता है। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो जाती है, और जहां फल की इच्छा से भक्ति की जाती है वहां इच्छा की पूर्ति नहीं होती। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवता क्षिप्रम इमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए भी देवताओं को पूजते हैं और उनको सिद्धि भी मिलती है, परंतु अर्जुन उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मेरी प्राप्ति में लगो और मेरा भजन करो। भगवान की भक्ति करने से फल की प्राप्ति होती है, पर फल भगवान देते समय हित सोचते हैं, जो अभी कह करके आए हैं, जो हितकर समझते हैं वही देते, देवता ऐसा नहीं सोचते। वह तो सोचते हैं कि दे दो, मांग लो, तुम मांगो हम दे देंगे, हमें क्या पड़ी, हमें हितानित से क्या वास्ता, माने हमें हित से क्या मतलब, हमने कोई आपके जीवन की जिम्मेदारी थोड़ी ले रखी है, ये देवताओं का विचार है। पर भगवान ऐसा नहीं सोचते, भगवान सोचते हैं कि भाई सबका हित होना चाहिए। इसलिए मनुष्य की समझदारी इसी में ही है, भगवान को पूजे, भगवान की भक्ति करें। अरे तुमको कुछ फल भी चाहिए, संसार की इच्छा भी पूरी करनी है, तो भगवान से करो। मांगना हो तो भगवान से ही मांगो, ये मांगना भी एक अच्छी बात है। पर न मांग करके भक्ति की जाए उसकी तो भाई बहुत उच्च कोटि की बात है, उसकी तो बात ही अलग है। देवताओं से मांगने की बजाय भगवान से मांगो। प्रश्न अब दूसरा कर रहे हैं। सेठ जी से पूछते हैं कि सेठ जी सत्संग बहुत समय से करते हैं, पर साधन सत्संग करने पर भी ठीक से नहीं होता है। ये अंदर से देवताओं से मांगने की, औरों से मांगने की ये जो भावना है ये बदलती नहीं है, कुछ कुछ मांग हो ही जाती है। ऐसा कोई तरीका बताओ कि जिससे भजन साधन में जोर बढ़े तो ये किसी से मांगने की, किसी से इच्छा करने की जरूरत ही न रहे। उत्तर देते हैं सेठ जी, तरीका तो तर्क के द्वारा, युक्तियों के द्वारा शरणानंद जी महाराज बहुत बतलाते हैं, शरणानंद जी महाराज सूरदास जी। और समय समय पर प्रश्नोत्तर होते हैं तो वो समाधान भी करते हैं, फिर भी जोर नहीं पकड़ता आपका, आप उसमें जोर नहीं लगाते। हमारा तो ये विचार है कि यदि आप वर्तमान का जो सुख है, बहुत गहरी बात है, यदि वर्तमान का जो सुख है उससे संबंध विच्छेद कर ले वे और भावी सुख का चिंतन न करें तो साधन में अपने आप तेजी आएगी और साधन में वृद्धि बन जाएगी। अब आप ये कहोगे कि वर्तमान का जो सुख है उससे संबंध विच्छेद कर देवे और भावी सुख का चिंतन न करे, ये बात तो ठीक है, पर ऐसा करना सरल काम नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। सुख मिलता है, सुख देखते हैं, तो उधर हमारा मन दौड़ पड़ता है, क्या करें। तो भाई यदि ऐसी बात है तो हम चाहे आपको कितनी बात बतला दें, उससे क्या होगा, साधन तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि बतलाने वाला बतला सकता है, साधन करना तो साधक पर ही जिम्मेवारी का काम है। जब तक चेष्टा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। एक भाई ने मुझसे कहा था, उसका नाम नहीं बतलाऊंगा, उसने हमसे कहा कि मुझे भगवान का दर्शन करा दो। मैंने कहा कि भाई ये तो मेरे अधिकार की बात नहीं है, मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, मैं नहीं करा सकता। ऐसा तो है नहीं कि मेरे जेब में जैसे रुपया है वैसे भगवान और मैं दे दूं, लो साहब रुपया ले लो, हेलो। ऐसा तो है नहीं कि रुपया जैसी बात हो कि मेरे पास रखा है और मैं उठा कर दे दूं कि लो भगवान को उठा ले जाओ। भगवान तो भाई प्रेम से मिलते हैं, किसी के मिलाने से मिलते हो ये बात नहीं है, प्रेम से मिलते हैं। आप साधन में लग जाओ, भगवान में प्रेम बढ़ाओ, भगवान के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसी लालसा होगी तो भगवान से आप क्या मिलेंगे, भगवान दौड़े दौड़े आपसे मिलेंगे। यदि आपके मन में लालसा होगी तो भगवान को आपसे मिलने की इच्छा हो जाएगी। दूसरी बात उसने मुझसे कही कि सेठ जी आप शक्तिपात कर दो, आप कोई ऐसा प्रयोग करो जिससे मुझ में कोई चमत्कार आ जाए। तो वह सिद्धियों की जो बात है, मैंने उसको कहा ये जो सिद्धियों की बात है, ये सिद्धियों की बात शास्त्रों में आती है, और जितनी भी सिद्धियां हैं, अणिमा है, महिमा है, गरिमा है, वह तो शास्त्रों से मिलती है और शास्त्र के अनुसार चलने में मिलती है। हमें तो इन सिद्धियों से कोई लेना देना नहीं, इसलिए हम ये सिद्धि क्यों करें। हम तो एक बात बता सकते हैं कि ये सिद्धियां संसार में जो चमत्कार की बातें हैं, ये सिद्धियां भगवान की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। कोई आदमी में चमत्कार आ जावे, यूं कर ले, वो भविष्य जान ले, वो यूं कर ले कि भाई रे बाधा ही बाधा है। एक ने प्रश्न किया, गीता जी में ऐसा कौन सा साधन है कि जिससे भगवान की प्राप्ति हो जावे? तो सेठ जी बोलते हैं गीता में बहुत से साधन हैं, तीन खास है, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तीनों में से भगवान प्राप्त हो सके, तो ये तीन क्यों बताए, एक ही बतला देते। भगवान को जब जल्दी भगवत प्राप्ति कराने के लिए अर्जुन को उपदेश देना था, ये तीन क्यों बताया, एक ही बता देते। तो कहते हैं कि अधिकारी के अनुसार तीन है, जिसकी ज्ञान योग में रुचि है वो ज्ञान योग अपनाओ, किसी की कर्म योग में रुचि है तो कर्म योग में अपनाओ, किसी की भक्ति में रुचि है तो भक्ति योग को अपनाओ। अब बताते हैं कि कौन कौन से साधन कहां कहां आए हैं। तो सबसे बढ़िया बात हमको लगती है नवे अध्याय में कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो इसे। इसमें भगवान ने कृपा करने में हद कर दी कि कोई दुराचारी से दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है तो वो संत महात्मा बन जाता है, जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसका निश्चय पक्का हो गया। ये बात हमको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि निश्चय की जरूरत है। निश्चय करो, निश्चय कर लिया किसी पापी आदमी ने भी कि भाई भगवान के भजन के समान और कुछ नहीं है, तो अब दुनिया चाहे उसको कुछ भी कहे पर भगवान तो उसको महात्मा मान लेते हैं, इतने दयालु है भगवान। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसलिए हमको तो ये भक्ति की बात बहुत ही बढ़िया समझ में आती है। नमे भक्त प्रणश्यति, भक्त का कभी पतन नहीं होता है। और ज्ञान योग में भी अच्छी अच्छी बातें आती है, कर्मयोग की भी अच्छी बातें बताई है। तो ज्ञान योग में क्या बताई वो अब कल बताएंगे। भक्ति सेठ जी को भी, भक्ति सेठ जी वैसे ज्यादा ज्ञान की बात करते थे, पर उनसे कोई कुरेद करके पूछता था तो वे भक्ति की बड़ी महिमा गाते थे। राम।